श्री कृष्ण सबके पूज्य हैं, सबके पूज्य हैं, सबसे महान हैं, देवताओं से भी, ऋषियों से भी सबसे महान हैं, इसकी याद कर रहे हैं। और सर्व मनोहर हैं, सबके मन को आकर्षित करने वाले, परम सुंदर हैं, और सर्व दुर्लभ भी है, सर्व दुर्लभ है, पर फिर भी वे भीष्म पितामह पर कृपा करके उनके सामने प्रकट हुए हैं, ये भाव है। इस भाव को कहने के लिए भीष्म पितामह जी कहते हैं, मुनिगण नृपवर जसं कुलें तह सदस युधिष्ठिर राजसु ये शाम अरहणम उपपेद इक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एषया विरात्मा। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह अब याद कर रहे हैं, राजसूय यज्ञ में जब भगवान की अग्र पूजा हुई थी, श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर उनकी पूजा किए थे, कुछ सम्मान किए थे, उनको बहुत अलंकार दिए और दिव्य वस्त्र दिए, सम्मान किए, चरण धोए, श्री द्रौपदी जी ने पानी दिया था चरण धोने के लिए भगवान का, और सभा कैसी थी, राजाओं में श्रेष्ठ राजा लोग वहां जुटे हुए थे, नृप और मुनिगण, मुनियों का समुदाय सभा में जुटा था। ये वर्णन है भागवत में कौन कौन ऋषि लोग जुटे हुए थे, सारे ऋषि लोग प्राय जो भीष्म पितामह के पास आए हैं वो सारे ऋषि मुनि वहां आए थे, युद्ध से बहुत पहले की घटना है। महाराज युधिष्ठिर युवराज बनाए गए थे, वो तो धर्मराज हैं, इतना सुंदर शासन किए, इतना सुंदर शासन महाभारत युद्ध के पहले कि सारा संसार सुखी हो गया और दुनिया के सारे राजा लोग कर दिए थे। राजसूय जग वही कर सकता है जो संसार में सबको हरा चुका है, तो भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर सबको परास्त किए थे और सब जगह से धन लाए थे, अर्जुन भीम से नकुल सहदेव, धन लाने के कारण, धन जीतने के कारण अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जो धन जीत करके लाए, राज्य विस्तार किए। राजसूय सभा में सब बड़े बड़े लोग आए थे, यहां तक देवता भी आए थे, राजा लोग थे, ब्रह्मर्षिगण थे, ब्राह्मणों से, ब्रह्मर्षियों से और क्षत्रियों से भरी हुई उस सभा के बीच में अंतः सदस्य युधिष्ठिर के उस सभा के, राजसूय सभा के बीच में एशाम, इनकी पूजा को जो स्वीकार किए थे, ये राजा लोग और ब्रह्मर्षिगण सब पूजा की अग्र पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा, वहां उस सभा में ये प्रस्ताव रखा गया कि किसकी सबसे पहले पूजा की जाए और सबसे श्रेष्ठ पूजा। कई लोग विचार करने लगे आपस में कि इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए, नारद जी की पूजा होनी चाहिए, नारद जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, शुद्ध है, इनकी वशिष्ठ जी की पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए। कहते हैं कि सहदेव जी खड़े हुए, कुछ महानुभावों का कहना है कि यह सहदेव जरासंध के पुत्र थे, राजा थे, जरासंध की मृत्यु हो गई थी, भीमसेन और अर्जुन के साथ भगवान गए थे और भीमसेन के द्वारा मरवा दिए, तो उसके बाद सहदेव को राजा बनाए, तो वे राजा बने हुए सहदेव सभा में उठ करके कहने लगे कि श्री कृष्ण ही सर्वदेवमय हैं, सर्ववेदमय हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, किसी भी विषय में श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, तो यहां ये नहीं देखना है कि ये ब्रह्मचारी हैं, ये सन्यासी हैं, यहां सुखदेव जी आए हैं, यहां मैत्रेय जी आए हैं, वशिष्ठ जी हैं, ये कोई देवता आया है, श्री कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इनकी सबसे अग्र पूजा होनी चाहिए और इनका सबसे श्रेष्ठ पूजा होनी चाहिए। इस बात का अनुमोदन भीष्म पितामह ने स्वयं किया, सबसे पहले ये खड़े होकर कहे कि सहदेव जो कुछ भी कह रहा है यही ठीक है और इनकी पूजा होनी चाहिए। तो एसाम, इसमें शब्द एसाम माने इन राजाओं की और ब्रह्मर्षियों के बीच की सभा में इनकी पूजा को भगवान ने स्वीकार किया था। वो मैं दृश्य देखा हूं, भीष्म पितामह कहते मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने पूजा हुई थी। संसार का सबसे बड़ा सम्मान स्पष्ट कह करके कि ये साक्षात भगवान है, ईश्वर है, इनकी पूजा होने पर सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वृक्ष के शाखा प्रशाखा पत्र पुष्प फल सबकी तृप्ति होती है, ऐसे श्री कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, ये सहदेव ने कहा था, लिखा है भागवत में। तो पूजा हुई उस सभा के बीच में, और महाराज युधिष्ठिर का एक प्लान था कि श्री कृष्ण को सारा जगत जाने कि ये भगवान है, इसी के लिए उन्होंने किया था। श्री कृष्ण का सबसे पहला प्रचारक सारे संसार में युधिष्ठिर महाराज हैं, जिन्होंने भरे बीच सभा में लाखों लोगों के बीच में श्री कृष्ण को खुलम खुला कहवाया ऋषियों द्वारा, ये साक्षात भगवान है, सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो कोई ऐसे नहीं जानता था। हाँ, वसुदेव जी का लड़का है, बड़ा होनहार है, बहुत सुंदर है, सुनते थे, लेकिन वो भगवान है इस बात का खुलासा राजसीय सभा में हुआ। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सभा में, केवल एक व्यक्ति ऑब्जेक्शन किया, और वो था शिशुपाल। शिशुपाल का भगवान कृष्ण से बैर था, और वो बैर और ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होना निश्चित किया गया था, पहला विवाह जो भगवान का हुआ। तो रुक्मिणी जी को उसके भाई चाहते थे कि शिशुपाल से विवाह, क्योंकि शिशुपाल राजा है, चेदी देश का राजा है, और कृष्ण तो ये गोचारक तो कुछ है नहीं, इसको राजकुमारी का विवाह राजा से होना चाहिए ना, कि ग्वाला से होना चाहिए, लाठी लेकर गाय चराने वाला, तो धनुष बाण धारण करने वाले किसी क्षत्रिय से, राजा से विवाह होना चाहिए, क्योंकि बड़े राजा की बेटी थी रुक्मिणी। इस कारण से द्वेषवश रुक्मी जो था, बड़ा भाई रुक्मिणी का विवाह तय कर, लेकिन रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, द्वारका में भेजा, भगवान आए और राजाओं के बीच में द्रौपदी रुक्मिणी को उठा कर ले गए, रथ पर ले चले। रुक्मिणी जी का सौंदर्य इतना था कि वे कुछ कर नहीं पाए, अपने सौंदर्य से ही उन्होंने उन लोगों को बेहोश कर दिया। भगवान रथ पर चढ़ाकर रुक्मिणी जी को ले गए, पीछे जब होश हुआ तो हल्ला करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी उदाहरण दिए हैं, जैसे सियारों के बीच में सिंह अपना भाग ले जाए और बाद में सियार हुआ हुआ सब करने लगे, वैसे ही जरासंध शिशुपाल सब हुआ हुआ, अरे अरे तुम क्या कर रहे थे, वो ग्वाला ले गया रुक्मिणी को, ऐसे वैसे धरो, अरे मैं थोड़ा सा सोचने लगा, मेरा ध्यान नहीं रहा, तुम क्या कर रहे थे, पकड़ो पकड़ो, धरो 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 धरो। जब वो चले कुछ आगे, तब तक बलराम सिंह आ गए। बलराम जी एक औक्षौरी सेना लेकर के आए थे, कृष्ण के बिना कहे, कि छोटे भाई के प्रति इतना स्नेह है कि जानते थे कि वहां लड़ाई होगी रुक्मिणी के विवाह में। जब श्री कृष्ण को संकेत किए तुम आगे जाओ, और वे जादूओं की सेना लेकर के खड़े हो गए, युद्ध होने लगा, अधिकांश लोग मारे गए उस युद्ध में, छोटे छोटे राजा। विवाह हो नहीं पाया, विवाह द्वारका वाला किया रुक्मिणी जी को ले। अब सोचिए जो दुल्हा बन करके गया होगा शिशुपाल, एक तो पहले से ही कृष्ण से बैर था, वो कंस का मित्र था, कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसका क्रोध बहुत बढ़ गया था, और अब जब विवाह भी नहीं होने दिया, उसकी संभावित पत्नी को ले गया, तब तो क्रोध का कोई सीमा नहीं रही। क्रोध मेरे यहां कहते हैं, एक तो करैली दूसरे नीम पर सवार, एक तो अपने आप करैला है और जो नीम पर उसकी शाखाएं चढ़ें तो कितना तीत होगा, कितना तीक्ष्ण होगा, करैला अपने आप में तीक्ष्ण होता है। अब तो इसके क्रोध की सीमा नहीं रही। किसी तरह से दिन चल रहा था, कट रहा था, और इसके बाद क्या हुआ कि उसके जो कर्णधार थे उसकी उसको मानने वाले जरासंध मार दिए गए, और क्रोध बढ़ा था। और ऐसे कृष्ण की जब बीच सभा में पूजा हुई तो इसे सहन नहीं हुआ, वो तुरंत माइक पकड़ा और कहा, बोलने लगा, रोक रहे थे कुछ लोग, नहीं नहीं आप तुम लोग को, नहीं नहीं मैं ऐसा मानता हूं काल बहुत बलवान है, काल ने इन सभी सभासदों की बुद्धि पर पानी फेर दिया है, इसका मतलब तुम लोगों को बुद्धि नहीं है। यहां इन राजर्षियों को बुला करके और ब्रह्मर्षियों को बुला करके इनके बीच में युधिष्ठिर जो इस ग्वाले की पूजा कर रहा है, मैं मानता हूं महान अन्याय हो रहा है। जब इसको पूजा करनी थी तो अपने घर में एकांत में किया होता, सबको दिखा के रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है, ये क्या काम किया है कृष्ण, इसको कोई राज्य नहीं है, कुछ नहीं, ये ग्वाला है तो क्षत्रिय भी नहीं है, गाय चराया है सब लोग जानते हैं, दही माखन गोपियों के घर से चुराता था, गोपियों का चीर चुराया है, नाचना गाना बस यही इसका काम है, और ऐसा व्यक्ति राजाओं के बीच में पूजा पाएगा? अरे राजा तुम लोगों को क्या हो गया है, मर जाओ जाकर, तुम्हारे जीते जी और इस ग्वाले की पूजा होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये युधिष्ठिर कृष्ण के गुणों के कारण इसकी पूजा नहीं कर रहा है, इसका प्रेम है इसलिए पूजा कर रहा है, तो अपना प्रेम एकांत में क्यों नहीं करते हो, कृष्ण के गुणों को देख करके पूजा नहीं कर रहा है, इसका प्रेम है इसलिए पूजा कर रहा है, जो सही बात है, प्रेम हो चाहे कुछ, इसका स्नेह है, लेकिन ये सबको बेवकूफ बना रहा है। बहुत बढ़ता गया, बहुत बातें बोला है महाभारत में, बहुत गाली दिया है, बीच में दिखाया गया है भगवान का एक बार कहे, ये भी कहा, कैसे कैसे कहा, तो भगवान ने कह दिया इस बात पर, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, जो लड़की तुमको नहीं चाहती थी उसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे। इस पर शिष्यपाल कहा, छी छी वो घटना इस सभा में बोलते तुम्हें शर्म नहीं लगती है, मैं तो चर्चा नहीं कर रहा हूं, तुम अपने आप चर्चा कर रहे, देखिए इसकी बुद्धि, देखिए इसकी बुद्धि, विवाह मेरे साथ तय हुआ था कि तुम्हारे साथ, अरे नालायक काला ऐसे ही हो, विवाह मेरे साथ तय हुआ था तुम्हारे साथ, तुम जो उसको ले, भगवान इतना कह दिया कि जो लड़की नहीं चाहती थी उसको तो उसके साथ विवाह करना चाहते थे, तुम्हारी यही तो बुद्धि है। इस पर एकदम आग बबूला हो गया और कृष्ण को मारने चला, मारने चला, 100 गलती जब पार हो गई, 100 अपराध, तब भगवान अपना चक्र निकाले और सबको संकेत किए कि आप लोग शांति से बैठे रहे, और चक्र से उसका गर्दन काट दी, शांति से सब हुआ, सभा में कोई चे तक नहीं बोल सकता, कुछ उसके गुट के लोग थे हाँ हाँ करते हुए बड़बड़ाते सभा से निकल गए, चले गए, हम दिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिखाते रहो, जब मालिक गया तो तुम क्या दिखाओगे। यद्यपि भीमसेन अर्जुन आदि उकसा रहे थे जब कृष्ण को गाली दे रहा था, तो ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन भगवान सबको मना कर रहे थे, मना कर रहे थे, वो भगवान का मौसेरा भाई था ना, बुआ का, बुआ का लड़का, देवकी की बहन का नहीं, बुआ का लड़का था, वसुदेव जी की बहन, जो भी, तो उसको भगवान ने कुछ वर दिया था उसके माँ को, तो उसके कारण क्षमा करते गए। उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा का अनुमोदन किया था भीष्म पितामह ने, तो शिष्यपाल बोलते बोलते यहां तक बोला, ये बूढ़ा तुम्हारी पूजा का अनुमोदन कर रहा है, काशी नरेश के यहां जाकर के क्या किया है, ब्रह्मचारी बनते हो ना, और 3 लड़कियों को उठा करके रथ पर बैठाया, अरे तुमको मैं जानता हूं, गाली दे रहा था कि तुम क्यों कृष्ण की पूजा करने के लिए कह रहे हो, मैं ऐसा मानता हूं कि भीष्म पितामह ये बूढ़ा शरीर है, अब इसका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है, मैं ऐसा मानता हूं। ये अनुमोदन कर रहा है, बहुत दांत पीस रहा था वो भीष्म पितामह पर। कहा कि अगर पूजा करनी है तो मैं तो कहता हूं कि इसी की पूजा कीजिए, ये पूजा करने लायक है, इसकी पूजा होनी चाहिए भीष्म की, लेकिन कृष्ण की नहीं। हम तो कहते हैं कि भीमसेन की पूजा होनी चाहिए, भीमसेन पूजा करने लायक है, अर्जुन पूजा करने लायक है, लेकिन ये किस गुण से पूजा करने लायक है? इस तरह से बोल रहा था, लेकिन सभा में बात हो गया। इन सब दृश्यों को भीष्म पितामह ने देखा था। उस समय भगवान सभा के बीच में बैठे थे, सारा सौंदर्य, सारा तेज बल वैराग्य की मूर्ति, स्वयं भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो सभा के बीच में इन सब राजर्षियों का, ब्रह्मर्षियों का, जिन्होंने पूजन स्वीकार किया, और सभी के द्वारा इक्षणीय थे, एसाम इक्षणीय और एसाम अर्हणम, इन सबके द्वारा भी इक्षणीय थे, सबके नेत्र कृष्ण पर थे। भीष्म पितामह उसकी याद कर रहे हैं, सभा में प्रत्येक व्यक्ति की नजर भगवान के तरफ थी, सब देख रहे थे। वही प्रभु मम दृषि गोचर, आज मेरे आंखों के सामने आवि प्रकट है, जबकि वे आत्मा हैं, परमात्मा हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं, हैं सब जगह, सबके हृदय में हैं, लेकिन कभी प्रकट दिखाई नहीं देते हैं, पर वही आत्मा अंतर्जामी भगवान आज हमारे आंखों के सामने हैं। अहो मैं भाग्यमिति, श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, मेरा कितना बड़ा भाग्य है आज मेरे आंखों के सामने है। उस समय भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, क्योंकि खड़े होने पर भीष्म पितामह को थोड़ी दूरी का अनुभव हो रहा था, थोड़ी दूरी का, तो भगवान उनके पास आ गए और बैठे थे कुछ ऊंचे आसन पर। भीष्म पितामह इनके मुख को बिल्कुल निकट से देख रहे थे, बिल्कुल निकट से। उसको कहते ऐसा आवि आत्मा, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे आंखों के सामने है, मेरा कितना बड़ा भाग्य। श्री कृष्ण बिल्कुल आंखों के पास थे, निकट में श्री कृष्ण के मुख को देख रहे थे, अंग छवि को देख रहे थे। इसको कहते ऐसा आविर आत्मा, ऐसा शब्द का ही अर्थ है ए। युधिष्ठिर महाराज थे बगल में, अर्जुन थे और सब पांडव थे, और ब्रह्मर्षि राजर्षि सब भरे हुए थे, लेकिन भगवान कृष्ण आगे थे, भीष्म पितामह के बिल्कुल पास में, और वे उनको देख रहे थे। मन की वृत्ति, आंख की वृत्ति और वाणी की वृत्ति सब कृष्ण में थी, और न कुछ स्मरण आ रहा था, न और कुछ बोल रहे थे, और श्री कृष्ण बिल्कुल निकट उपविष्ट थे। अग्रता एवं उपविष्टम, श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान बिल्कुल आगे थे, निकट थे और बैठे थे। उनको कारण ऐसा ये भगवान, ये परमात्मा, अरे जिनको लोग अव्यक्त कहते हैं, जिनको लोग निराकार कहते हैं, इसलिए कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर वही प्रभु अपने वास्तविक स्वरूप में मेरे आंखों के सामने प्रकट है, मेरा कितना बड़ा भाग्य है।